सागर धर्मामृत लेक्चर नंबर एक. ओम नमः सिद्धेभ्य. ओम नमः सिद्धेभ्य. ओम नमः सिद्धेभ्य. ओम श्रुतात्मने सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाऊनम्. अथ नत्वार्हतो क्षोण चरणान् शमनानपि सद्धर्मरागिणां धर्म सागाराणां प्रणेश्यते. यह सागर धर्मामृत नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना पंडित श्री आशाधर जी ने की थी और इसमें श्रावकों के ये चरणानियोग संबंधी ग्रंथ है. श्रावक के आचार संबंधी यहाँ बात चलेगी. वैसे तो उन्होंने अनगार धर्मामृत पहले लिखा है धर्मामृत में से और फिर सागर धर्मामृत लिखा है, परंतु भी श्रावक की बात होने से हम पहले इसको लेकर फिर अनगार की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ दशम अध्याय से शुरुआत बताई है, परंतु ये सागर धर्मामृत का पहला अध्याय है, इसलिए ब्रैकेट में पहला अध्याय लिख दिया है. अभी तो हमने यह मंगलाचरण गाया है, तो इस ग्रंथ की शुरुआत मंगल से करते हैं. उसके पहले हम पंडित आशाधर जी के बारे में थोड़ी बात देखेंगे. ये नाम से पता है कि वो पंडित थे और बहुत उच्च प्रति के विद्वान थे. उसके ऊपर कुछ पुस्तक भी मेरे हाथ में है, पंडित आशाधर जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व संबंधी. हम वो बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे. हम यहाँ कहते थे देखो पंडित आशाधर जी उच्च कोटि के विद्वान, मैं दूसरे पुस्तक में से पढ़े, उत्कृष्ट वक्ता और प्राणी मात्र के हितचिंतक थे. उनके उपदेशों से जैन जैनेतर सभी लाभ उठाते थे. वे किसी से भेदभाव नहीं करते थे. जैन तो संयम मार्ग पर बढ़कर सच्चे अर्थों में श्रावक बन जाते थे और अजैन उनसे किसी प्रकार का नियम लेकर अपने जीवन का सुधार कर लेते थे. वे जहां भी गए प्रौढ़ों वृद्धों के लिए स्वाध्यायशाला, बालकों के लिए पाठशालाओं की स्थापना करते थे. मंडलगढ़ नलाछा में तो इनका विद्यापीठ चलता था. यहां सभी उनके प्रवचनों का लाभ उठाते थे और कई तो व्रत प्रतिमा लेकर व्रती श्रावक बन जाते थे. कुछ मुनि, अनेक भट्टारक, ब्रह्मचारी इनके शिष्य या अनुयायी थे. ग्रह चैत्यालय निर्माण कराकर दैनिक पूजा वंदना स्वाध्याय प्रतिक्रमण द्वारा पंच पूजा पर जोर दिया करते थे और गृहस्थ के आवश्यक कार्यों की प्रेरणा देते थे. वे मुनियों व्रती श्रावकों को भक्तिपूर्वक आहार दान, साधर्मियों को समाधान की पुष्टि करते थे. महिला जागरण, उद्धार और उनकी शिक्षा के पोषक थे और श्रावकों को तीर्थ यात्रा करने के लिए भी प्रेरित करते थे. उन्होंने रोगियों के लिए औषधालय, दीन दुखियों के लिए भोजनशाला, बालकों के लिए पाठशाला खोलने पर भी जोर दिया था. अभी बाकी तो हम पुस्तकों में पढ़ेंगे उन्होंने क्या लिखा है, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे. यानी विवाह के बारे में भी उन्होंने कुछ अपने मत वगैरह प्रस्तुत किए जो आने वाली बात है इसमें, इसलिए हम उसकी अलग से चर्चा नहीं करते हुए वो सागर धर्मामृत में ही उसकी बात पढ़ेंगे. यहाँ तो जब उन पर कुछ लिखने का प्रसंग आया था, किसी विद्वान से बोला गया था कि इन पर कुछ लेख लिखो, तो उन्होंने फिर उसका ढूंढना चालू किया. सागर धर्मामृत, अनगार धर्मामृत, लाठी संहिता आदि. ढूंढते ढूंढते उन्हें तो 100 से भी अधिक ग्रंथ उनके मिले, उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। देखो कभी हम ग्रंथ शुरुआत करते हैं उनके ग्रंथ रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं हैं उनकी। यहाँ तो सागर धर्मामृत, अनगार धर्मामृत है, और लाठी संहिता भी उन्हीं की लिखी हुई है। ये बहुत आवाज आ रही है, उसके नाम होगी नहीं यहाँ पर, एक मिनट है मैं देख के बताती हूँ आपको नाम उनकी रचना। आचार्य की रचनाएं 5 नंबर 44, जरा आवाज हेलो हेलो उनकी रचनाएं देखो, अनगार धर्मामृत सूक्ति कहा है, अनगार धर्मामृत की ज्ञान दीपिका टीका, अनगार धर्मामृत की भव्य कुमुद चंद्रिका टीका, ये ऑलरेडी जो प्रकाशित है उसकी बात है। सागर धर्मामृत की सूक्ति, सागर धर्मामृत विजया टीका, सागर धर्मामृत ज्ञान दीपिका टीका, सागर धर्मामृत भव्य कुमुद चंद्रिका टीका, सहस्र नाम जिन सहस्र नाम और उसकी टीका, जिन्हें योग्य कल्प, अभी एक 100 से भी ज्यादा है, मैं केवल पढ़ते जाऊं तो भरतेश्वर अभ्युदय प्रमेय रत्नाकर सिद्ध भक्ति भजन संग्रह महाभिषेक विधि क्रियाकलाप, ये इस मुझे मेरे पास तो 95 तो उन्होंने बताए हैं। बहुत सारी पूजाएं भी लिखे हैं, कुछ विधाने भी लिखी है, प्रतिष्ठा पाठ भी लिखे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने अभी मंगलाचरण देखा था। मंगलाचरण के पहले ये बता रहे हैं, देखो मंगलाचरण के ऊपर जो श्लोक है उसको पढ़ेंगे, जहां दशम अध्याय लिखा है प्रस्तावना के बाद। जहां से नंबरिंग शुरू होता है 1 2 3 इस तरह से, वो प्रस्तावना है। उसके पश्चात आगे नेक्स्ट और आगे चलो, प्रस्तावना समाप्त हो जाती है उसके बाद। प्रस्तावना के वो सब मिलकर 29 पेजेस है उसके बाद। हाँ, सुदृग्बोधो बलद्वृत्त मोहो विषय निस्पृह हिंसा देवीरता कास्न्यर्द्यति श्रावकोशतः, उसका अर्थ नीचे देखते हैं। ये बीच में जो लाइन है उसके नीचे अर्थ दिया है, अनगार धर्मामृत के चतुर्थ अध्याय में कहा है। पहले अनगार और फिर सागर है, वहां 9 अधिकार है और यहाँ 10वें से शुरुआत होते हैं। तो अनगार धर्मामृत के चतुर्थ अध्याय में ऐसा कहा है, जिस जीव का ज्ञान जीवादि तत्वों के विषय में हेय उपादेय और उपेक्षणीय रूप से जागृत है, तथा यथा योग्य क्षोभम रूप से चारित्र मुनि कर्म हीयमान है, हीयमान ने घटता हुआ। देखो क्या कहते हैं, जीव का ज्ञान किसमें लगा, यानी जीवादि तत्वों में, हम कहते हैं हेय गेय उपादे, तो उसमें बराबर जागृत है। हम भी बहुत अच्छे तरह से जागृत है, हेय क्या है, उपादेय क्या है, किसके बारे में, लौकिक चीजों के बारे में। हाँ क्या रखना चाहिए अपने लिए, क्या रखना है क्या छोड़ना है, कौन अपने लिए हितकारी है कौन अहितकारी है, तो बहुत अच्छी भांति जानते हैं। परंतु यहाँ क्या कहा है, इन्हें हमारा ज्ञान तो उसी में उलझा रहता है। यहाँ कहते जीवादि तत्वों के विषय में है ये ज्ञेय उपेक्षणीय, उपेक्षणीय ज्ञेय में न उसमें राग द्वेष ज्ञेय तरीके से, जैसे हम है ज्ञेय और उपादेय कहते ना, वैसे यहाँ उपेक्षणीय का। तथा क्या कहते हैं, यथा योग्य क्षोषम रूप से चारित्र मौन कर्म ही यमान है, यानी राग द्वेष मंद है, यानी कषाय जिसको कहेंगे मंद है, और जो देखे हुए सुने हुए और भोगे हुए भोग उपभोगों में निरभिलाषी है। क्या क्या किया हुआ, पूर्व में देखे हैं सुने हैं और भोगे हैं, मन के द्वारा उसी के विचारों में उलझा रहता है जी, तो कहते उसके भोग और उपभोग में निरभिलाषी, निरअभिलाषी, अभिलाषी नहीं इच्छुक उसका, निरअभिलाषी नहीं उसकी कोई इच्छा नहीं है उसके, वह यदि हिंसा आदि पांच पाप कर्मों से पूरी तरह से विरत है तो उसे मुनि या यति या श्रवण कहते हैं, और यदि वह एक देश से विरत है तो उसे श्रावक कहते हैं। ये कहां अनगार धर्मामृत में यति और यानी मुनि और श्रावक के बारे में ये बताया था। पहले में पहले जीवादि सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान है उसका, और फिर कषायहीन है और भोगों में और उपभोगों में निरभिलाषी है, और पांच पाप कर्मों से पूरी तरह से विरत है, एक देश नहीं पूरी तरह से सकल व्रति जिसको हम कहेंगे, तो वो मुनि है, और एक देश विरत है वह श्रावक है। अतः धर्मामृत ग्रंथ के मध्य में, मध्य क्यों कहा, क्योंकि ये धर्मामृत ग्रंथ तो अनगार धर्मामृत से शुरू हुआ है और ये उसका मध्य है, यहाँ मंगलाचरण पूर्वक सागर धर्मामृत का कथन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। यानी धर्मामृत एक ग्रंथ, शुरू में वहाँ अनगार धर्मामृत और फिर यहाँ से सागर धर्मामृत शुरू होता है, इसलिए यहाँ फिर से मंगलाचरण करते हैं। ये पद्धति है जिनागम की कि प्रत्येक ग्रंथ के शुरुआत में तो मंगलाचरण करते ही करते, पंच परमेश्वरी को नमस्कार करेंगे, उनके स्मरण करेंगे, मध्य में भी कहीं मंगल होता है और अंत में भी होता है, आदि मंगल मध्य मंगल अंत मंगल। यहाँ तो पूरे धर्मामृत ग्रंथ के मध्य के स्वरूप में मध्य मंगल कहेंगे और सागर धर्मामृत के लिए आदि मंगल कहेंगे। ये जो भी मंगलाचरण हमने गाया था अथ नत्वार है, तो उसका अर्थ देखते हैं। पहले उसको आपको संधि तोड़कर पढ़ना था है ना, अथ यानी अब, नत्वा यानी नमस्कार करके, किसको नमस्कार करके, अरहतो अरहंतों को नमस्कार करके, वे कैसे अक्षुण चरणान श्रमणान अपि, अक्षुण यानी संपूर्ण, संपूर्ण यथाख्या चारित्र के धारक, संपूर्ण चारित्र के धारक यानी कौन से, यथाख्या चारित्र के धारक, और श्रमणान अपि, और श्रमणों के प्रति सद्धर्म रागिणाम, श्रमणों के प्रति धर्म में प्रीति रखने वाले श्रावकों या गृहस्थों के धर्म को कहूंगा। यानी किसको नमस्कार किया, तो अरहंतों को और मुनियों को, श्रमणान अपि श्रमणों को भी, कैसे है वो भी, वो भी निरतिचार चारित्र के धारक है, अरहंत भगवान तो संपूर्ण चारित्र के धारक है और मुनिराज निरतिचार चारित्र के धारक है, इनको नमस्कार करके प्रणेश्यते ने कहूंगा, क्या कहूंगा, धर्म कहूंगा, किसके लिए या किसके धर्म को कहूंगा, सागाराणाम, सो प्लस आगार, आगार यानी घर, गृहस्थ, सागर करते थे गृहस्थ, अगर इन घर जो घरों में रहते हो गृहस्थ साकार, और जो गृहस्थ जीवन छोड़कर वन में विहार करते हैं वो है मुनिराज अनागार अंगार। तो कहते श्रमणों के धर्म में प्रीति रखने वाले श्रावकों के धर्म को कहो। दूसरे श्रावक के लिए क्या शब्द बताया, गृहस्थों के धर्म को कहो, उसका विशेषार्थ। देखो ये विशेषार्थ जो है ना, संपादक सिद्धांताचार्य, हाँ संस्कृत ऊपर ही उसी का ट्रांसलेशन है, तो कैलाश चंद जी ने किया हुआ। मुझे कुछ बताना था इसमें से, मेरे ख्याल से वो पहली पुस्तक में उस संबंधी चर्चा की होगी, वो इसमें तो नहीं है। ठीक है, हम विशेष आप पढ़ते हैं, आपको संस्कृत पढ़ना है क्या, डायरेक्ट यही पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है संस्कृत में तो एक एक शब्द लिया है उसका संस्कृत में ही समझाया, या तो दूसरा शब्द है या तो पूरे वाक्य में समझाया। जैसे देखो ये तीसरा शब्द नत्वा है ना, शिरह प्रणीकरणादीना विशुद्ध मनोनियोगे न च पूजयित्वा, यानी वो तो आपको डायरेक्ट हिंदी पढ़ेंगे तो अधिक अच्छा रहेगा। श्लोक के प्रारंभ में अथ शब्द मंगलवाचक या अधिकारवाचक है, यानी अभी नया अधिकार शुरू होता है तो अथ लिखने की पद्धति, जो सूचित करता है कि यहाँ से सागर धर्म का अधिकार है। अक्षुण शब्द का अर्थ संपूर्ण भी है और निरतिचार या निर्दोष भी है, दोनों अर्थ के लिए आता है, संपूर्ण या निरतिचार, निरअतिचार अतिचार रहित यानी निर्दोष शुद्ध। अरहंत भी अक्षुण चरण है, चरण यानी चारित्रवाद, और श्रमण भी अक्षुण चरण है। समस्त मुनि कर्म का क्षय होने से प्रकट हुआ चरण अर्थात यथाख्यात चारित्र संपूर्ण नित्य और निर्मल होता है, यानी कायम के लिए है ना, अभी अरंत बोलने हैं इसलिए संपूर्ण है नित्य है और निर्मल है। अतः अरंत तीर्थंकर परम देव अक्षुण चरण है, तथा जो श्रम करते हैं अर्थात बाह्य और अभ्यंतर तप करते हैं उन्हें श्रमण कहते हैं, अतः श्रमण से आचार्य उपाध्याय और साधु लिए जाते हैं। श्रमण भी अक्षुण चरण होते हैं, भावना विशेष के बल से उनका क्षायोक्षमिक संयम परिणाम रूप चारित्र अक्षुण अर्थात निर्दोष होता है। इन अरहंत आचार्य उपाध्याय और साधुओं को विशुद्ध मनोयोग पूर्वक सिर नवाकर उन गृहस्थों के धर्म को कहूंगा जो यद्यपि सहनन आदि की कमजोरी के कारण श्रमणों के सर्वविरति रूप चारित्र को पालने में असमर्थ है, तथापि उससे अनुराग रखते हैं प्रीति रखते हैं। वो स्वयं तो मुनिराज नहीं हुए हैं, मुनि धर्म पालन करने योग्य उनके परिणाम नहीं है कहो, या उनके वैसे शारीरिक बल नहीं है, फिर भी वो मुनि धर्म के प्रति उन्हें रुचि है प्रीति है। जिन गृहस्थों को मुनियों के धर्म से अनुराग नहीं है उनका एक देश त्याग भी सच्चा नहीं है। इसको अंतर श्रीमद जी में भी आता है ना कि कब मैं मुनि हो जाऊंगा कब विचरूंगा, तो ऐसी भावना तो प्रत्येक श्रावक के मन में होगी ही होगी, नहीं तो कहते उसका एक देश व्रत पालन करना भी मिलता। सर्व विरति की लालसा का ही नाम देश विरत रूप परिणाम है। क्या बात है? देश विरत है ना, एक देश व्रत, उसमें क्या गर्भित है? हाँ, तो सर्व विरत होने की इच्छा उसके पीछे हो, ऐसा ही वो देश विरति रूप परिणाम है, जिसमें मुनि धर्म अंगीकार करने की, अ के ऊपर बिंदी लगाना, देखो, जिसमें मुनि धर्म अंगीकार करने की आंतरिक इच्छा होती है, भले ही वह अपनी निर्बलता के कारण इस जीवन में मुनि न बन सके, किंतु वही निष्ठापूर्वक श्रावक धर्म का पालन कर सकता है। अंतरंग में भावना तो ऐसी होनी चाहिए कि कब मैं मुनि बनूंगा, कब अंतरंग में पूरा स्थिर होकर अरहंत दशा प्राप्त करूंगा, परंतु अभी नहीं बन सकता है तो कहते हैं निष्ठापूर्वक श्रावक धर्म का पालन करना चाहिए। आगे सागर या गृहस्थ का लक्षण कहते हैं। हाँ, फिर से दोबारा। हाँ, सहन आदि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा, ये कोई बीमारी है या कोई शारीरिक अवस्था नहीं उनकी लेने की। सहनन तो एक उन्होंने उदाहरण के तौर पर बता दिया। बिल्कुल होते हैं, चौ सहनन वाले के साथ गुण स्थान है, पर यहाँ सहनन लिखने का है कि उनको बल नहीं है, उनके शारीरिक बल नहीं है, कहो कोई बीमारी कहो या कोई इच्छा नहीं हो रही उनके लिए, इच्छा नहीं तो उनका एक देश व्रत भी सच्चा नहीं ऐसा कहते, परंतु यहाँ तो समय दृष्टि है और एक देश व्रति है, तो उसको मुनि धर्म पालने का तो जरूर अंतरंग में भावना रहेगी ही रहेगी। आगे सागर या गृहस्थ का लक्षण कहते, पहले ऊपर का श्लोक पढ़ेंगे। अनाद्य विद्या दोषोत्थ चतुर्संज्ञा ज्वरातुरा शश्वत्स्वज्ञान विमुखा सागारा विषयोन्मुखा। तो क्या कहते हैं? अनादि अविद्या रूपी दोष से, ये अनादि की अविद्या क्या है? अज्ञान, मिथ्यात्व। अविद्या ने अज्ञान, यानी अज्ञान यानी कौन सा? तो अपने संबंधी अज्ञान चल रहा है। तो अनादि की अविद्या, अनादि अविद्या रूपी दोष से उत्पन्न हुई क्या? चार संज्ञा और उस रूप ज्वर, ज्वर यानी बुखार। कैसा बुखार आया है? चार संज्ञा रूपी बुखार। ये संज्ञा कभी सुना है ना? नहीं सुना। क्रोधमान मिली भाई क्या कहते हैं? संज्ञा, चार संज्ञा। हाँ, आहार भय मैथुन और परिग्रह, ये चार संज्ञा है। तो क्यों उत्पन्न होती है? अनादि अविद्या रूपी दोष से उत्पन्न हुई चार संज्ञा रूपी ज्वर से पीड़ित। कौन सा बुखार से पीड़ित है? तो ये चार संज्ञा रूपी, ये इच्छाएं जो है, तीव्र वासना जो है, सभी जीवों के है, आहार भय मैथुन और परिग्रह। तो ऐसे जो पीड़ित सदा आत्मज्ञान से विमुख, क्योंकि अनादि अविद्या वाला लिया है, अभी समय तो नहीं प्राप्त हुआ है, तो सदा आत्मज्ञान से विमुख और विषयों में उन्मुख गृहस्थ हो गए। किसका वर्णन चल रहा है? अच्छा अच्छा विशेषण। आगार कहते हैं घर को, घर कहने से सभी पहेलियां आ जाती है। जो अगार में रहते हैं वे सागार कहे जाते हैं, अगार है, आगार नहीं, अगार। और जिन्होंने घर को त्याग दिया वे अनगार या श्रमण कहे जाते हैं। यहाँ केवल बाह्य त्याग की बात नहीं है, हम तो अभी पढ़े हैं, यानी जो समय दर्शन पूर्वक अंतरंग में स्थिरता पूर्वक मुनि दशा धारण करते हैं और वो घर छोड़कर तो वन में रहते हैं। क्योंकि संपूर्ण जन दीक्षा जो दिगंबर मुनि दीक्षा लिए बिना उनके तो सातवां गुणस्थान नहीं प्रकट होगा, फिर छठे सातवें में झूलते रहते हैं। तो पहले गृहस्थपना त्याग कर चले जाएंगे, मुनि धर्म अंगीकार करेंगे और फिर ध्यान के काल में उनको सातवां गुणस्थान प्रकट होगा। तत्वार सूत्र में अमार्य नगारश्च यानी सातवें अध्याय में 19वां सूत्र की सर्वार्थ सिद्धि टीका में यह शंका उठाई गई है, यदि घर में रहने वाले को वाले को गृहस्थ और घर में न रहने वाले को अनगार या मुनि कहते हैं तो उल्टा भी हो सकता है। मुनि किसी शून्य घर में या मंदिर में ठहरे हो तो वे सागार कहे जाएंगे और किसी कारण से कोई गृहस्थ घर छोड़कर जंगल में जा बसा तो वह अनगार कहा जाएगा। तत्वार सूत्र की टीका में पूछते हैं, इसके समाधान में कहा गया है, क्योंकि ये आचार्यों की पद्धति है, स्वयं प्रश्न उठा देंगे और उसका समाधान करेंगे, क्योंकि ऐसे उल्टे सोचने वाले कोई निकलेंगे उनको पता है आगे चलकर ऐसे उल्टी कुतर के ही चलने वाले हैं। इसके समाधान में कहा गया है, यहाँ घर से भाव घर लिया गया, चारित्र मुनि के उदय में घर से संबंध रखने के परिणाम को भाव घर कहते हैं। जिसके भावों में घर है वह गृहस्थ है, भले ही वह वन में चला जाए। क्या कहते हैं, भले घर छोड़कर वन में चला गया और भावों में घर बसा है तो वो गृहस्थ कहलाएगा, और जिसके भाव से घर निकल गया है वह यदि किसी शून्य घर या देवालय में ठहर गया, ऐसा नहीं कहा कि घर में रहता है बाल बीबी बच्चे के साथ, ऐसा नहीं कहा कि भावों में से निकल गया और घर में यानी कुटुंब में रह रहा, ऐसा नहीं कहा। जिसके भाव में से घर निकल गया है वो मुनिराज है, और किसी शून्य घर, क्योंकि वो तो विहार करते हैं तो कोई शून्य घर का अर्थ समझते हैं, खाली घर कोई पड़ा है ऐसा, खंडहर जो होते हैं या देव, हाँ कोई नहीं रहे, किसी का वो घर है ही नहीं, कोई रहते नहीं है वहां पर, तो विहार के काल में गांव के बाहर ऐसा उनका वहां निवास होता है। तो शून्य घर या देवालय में ठहर गया है फिर भी वह अनगार ही है, यहाँ सागार से भावागारी ही लिया गया है, भाव अगारी भाव घर वाला, यह उसके तीन विशेषणों से स्पष्ट होता है। अभी उसके तीन विशेषण क्या बता रहे हैं, अनित्य पदार्थों को स्त्री पुत्रादि संबंध को नित्य मानना, अशुचि शरीर आदि को शुचि मानना, शुचि का अर्थ समझते हैं पवित्र, शरीर तो अशुचि है उसको पवित्र मानना, शुचि मानना, दुखदायी परिवार आदि को सुखदायी मानना, और जो परवस्तु कभी अपनी नहीं हो सकती शरीर आदि उन्हें अपना मानना, इसका नाम अविद्या या अज्ञान है। फिर से देखेंगे क्या क्या बताया, अनित्य पदार्थों को नित्य मानता है और कायम रखने की चेष्टा भी करता है, और वो छूट नहीं जाए तो विकल्पों में भी, अरे कोई मर गया मानकर वो उसके संबंध में वो तो चलती रहती ना कुछ, तो नित्य उसके संबंध में आकुलित भी रहता है। तो कहते हैं नित्य मानना, अशुचि पदार्थों को शरीर आदि को शुचि ने पवित्र मानना, दुखदायी परिवार को सुखदायी मानना, परिवार दुख नहीं है, हमारा उसके प्रति जो ममत्व भाव है वो दुखदायी है, परंतु हम उपचार से परिवार को कहेंगे, और परवस्तु कभी अपनी नहीं हो सकती उन्हें अपना मानना, इसका नाम अविद्या या अज्ञान है। आप क्या कहते परवस्तु नहीं होता, हमारे पास इतने पैसे हैं, हमने कमाए हैं, है ना, हमने इतना सारा जुटाया है, घर बनाया है, क्या हमारी नहीं हुई क्या, ہم نے بہت محنت سے بنائی تھی نا اپنی, تو کہتے ہیں کہ یہ اویدیا ہے, اپنے ماننا ہی اویدیا, وہ کبھی ہوئی نہیں آپ کی, پھر بھی اس کو اپنی ماننا ہی اویدیا ہو گئی, اجان ہے. اس اجان کا آدی نہیں اتہ انادی, یہ کسی نے سکھایا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ پہلے نہیں تھا اور پھر بعد میں آ کے چپکا ہو, ایسا نہیں ہے. انادی کال سے جیو کے ساتھ یہ اجان روپی دوش لگا ہے. شریر میں جب وات پت اور کف وشم ہو جاتے ہیں تو اسے دوش کہتے ہیں. ہاں, وشم یعنی اس کا بیلنس بیلنس نکل جاتا ہے. دیکھو یہاں وشم ہونا کرتے کیا, دیکھو آیورویدک کا یہ نیم ہے, یا اس وات پت اور کف یہ جو تین پرکار ہے, تو اس میں بیلنس رہتا ہے تو شریر کا سواستھیہ بنا رہتا ہے. ان کا بیلنس بگڑ جاتا ہے, امبیلنس ہوتا ہے, تو جوار آدی ہو جاتے ہیں, یعنی بیماری ہو جاتی ہے. وشم ہونے کو کہیں گے دوش, پت بڑھ گیا, مات ہوا, ایسا جو کچھ کہنے کی پدھتی ہے. اور اس دوش کے کارن, وہ وشم ہونے کے کارن ہی منشیہ جوار سے پیڑت ہوتا ہے, یعنی کوئی بیماری اس کو لگی. اسی طرح اجان روپی دوش کے کارن, یہ تو ہوا ادہرن, وات پت کف آدی جو دوش اس کے ہوتے ہیں, اس میں امبیلنس ہوتا ہے, اس کے کارن بیماری آتی ہے. ایسے اجان روپی دوش کے کارن یہ چار سنگیا روپی جوار سے پیڑت رہتا ہے. یہ چار سنگیا ہے آہار, بھے, میتھن اور پریگرہ. انہیں کی ابھیلاشا کی پورتی میں گرہست سدا لگا رہتا ہے. یہ تو ہر ایک کے پریچے, کیونکہ انادی سے یہ سارے سنگیا ہے ہی, کیونکہ آہار سنگیا تو چھٹے گنستان تک ہے. اب یہاں کوئی چھٹے گنستان والا نہیں بیٹھا ہے, ستوے والا. تو کہتے ہیں کہ انہی کی ابھیلاشا, ابھیلاشا نے اچھا, یہ جو آہار کی اچھائیں ہیں, تو سارا دن ادھکتر سمے کے کہاں چلا جاتا ہے, پورتے کھانے میں, بنانے میں, کھانے میں, برسوں میں, کھلانے میں. بھے, بھے لگا رہتا ہے تو اس کے لیے حفاظت سے کچھ ہماری چیزیں سنبھالنے میں بھی ہمارا اپیوگ تو اسی میں لگا رہتا ہے. بھے کس کس کا بھے ہوتا ہے, چوروں کا بھے ہوتا ہے, اپنی چیزیں کوئی ہاں مر جائیں اس کا بھے, ہاں اس لوگ کا پر لوگ, آپ کو معلوم ہے, بولو بولو, ہاں ساتھ بھے, ہاں
اس لوگ کا بھے, پر لوگ کا بھے, ہاں مرن بھے, اکسمات بھے,
ہاں ہاں بولو, ویدنا بھے, ہاں اور نام کے تین ہیں, ہاں اگوپتی, اکسمات اور ارکشا. دیکھو اس لوک کا, پر لوک, مرن کے ساتھ ویدنا لگا لینا, تو چار تو یہ ہو گئے, اب تین ا والے ہیں, اگوپتی, ارکشا, اکسمات ہے ان کے, ارکشا. ہاں جب کبھی کوئی اپنے کو کچھ بولے گا, ہاں مس ہو گیا, اور کوئی اپنے کو پرشن پوچھیں گے, یہ بھے لگا رہے. ہم جاتے ہیں نا شبروں میں, سب کہتے آٹھواں بھے ہے سر, بہت پرشن پوچھتے ہیں نا. ہم کو پرشن, آپ کے پرشنوں سے ہمیں بھے لگتا ہے. دیکھو انہیں کی ابھیلاشا کی پورتی میں گرہست سدا لگا رہتا ہے, پریگرہ کی ابھی اس کے رات دن تو اسی کی چنتا, پڑھتے بھی کس لیے ہیں, پڑھائی کیوں کرتی, ڈگری کیوں حاصل کرنا, और ऐसी अच्छी डिग्री भी नहीं, ऐसी डिग्री की जिसमें कमाई ज्यादा है, क्योंकि हमारे की जमाने में अलग कोर्स के पीछे चल जाते हैं, आजकल के वो तो बच्चे भी इतने सयाने हैं तो पहले सोचते हैं
हाँ
किसमें पैसा ज्यादा मिलेगा, तो वैसे तो ये सारे के पीछे पैकेज पैकेज ये परिग्रह वाली जो संज्ञा है वही उसका कारण। और ऐसा नहीं ये मनुष्य में ही होता है क्या, कि पशु पक्षियों में भी होता है, तिरंजों में भी होता है। इसलिए यहाँ तो मुख्यतः मनुष्यों की अपेक्षा से बात करेंगे अधिक से अधिक, इसलिए उसे कभी अपने आत्मा की ओर दृष्टि डालने का समय ही नहीं मिलता और कहता है हमको मरने की भी फुर्सत नहीं है। फुर्सत वाले मरेंगे है ना। परमागम में कहा है, ये परमागम के लिए एक आंकड़ा लिखा है और नीचे उसका उद्धरण लिखा है, भाव पाहो। एगो मीस सदोपान दंसन लक्कण शेषा मे माहिरा भावा सर्वे संयोग लक्कण। तो परमागम में कहा है कि ज्ञान दर्शन लक्षण वाला एक मेरा आत्मा ही शाश्वत है, सदा रहने वाला है। पहले हमने वो अविद्या क्या देखी थी कि अनित्य पदार्थों को जीव नित्य मानता है, और यहाँ नित्य क्या है, एक में शाश्वत ज्ञान दर्शन लक्षण वाला मैं आत्मा मैं नित्य हूँ। तो क्या अन्य द्रव्य नित्य नहीं है, अरे पर मेरे से भिन्न है ना, वो तो संयोग में है बस, और संयोग अनित्य होता है, और वो नित्य होने से मुझे क्या, मैं स्वयं नित्य हूँ, ऐसा इस जीव ने कभी सोचा ही नहीं, पर्याय जितना अपने को मान लिया। तो कहते शेष सब बाह्य पदार्थ है, उनका मेरे साथ नदी नाव योग जैसा है। ये ऐसा नदी और नाव का संयोग हुआ वैसे, नहीं ये पहली बार ये दृष्टांत मैंने पढ़ा, नदी और नाव का संयोग। हाँ ये गाथा यही गाथा है, शेषा में बाहर रहा सर्वे संयोग लक्षण, वहाँ तो केवल संयोग लक्षण रूप है और यहाँ तो ये नदी और नाव का संयोग किया हुआ। यह आत्मज्ञान उसे होता नहीं, इसी से वह स्त्री आदि इष्ट विषयों में राग करता है और अप्रिय विषयों से द्वेष करता है, और वो इष्ट अनिष्ट भी इसीलिए लगते हैं उसको, इसीलिए भाषित होते कि मिथ्यात्व है, तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं है। इस राग द्वेष के करने में ही वह सदा लगा रहता है, इसी में उसका जीवन तक समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसके बाह्य कोई चीज है यही उसको पता नहीं है, किसी से राग किसी के द्वेष ये चलते ही रहते, उसकी रट चलती रहती, गाड़ी चलती रहती। पुनः दूसरे प्रकार से सागर का स्वरूप कहते हैं, एक प्रकार से गृहस्थ का लक्षण बताया भी दूसरे पद्धति से कहते हैं, ऊपर लिखा है अथ भंग्यंतरेण भूयस्तान एव आह, आह ने बताता हूं किसको, अन्य भंग से दूसरे प्रकार से अनाद्य विद्यानुस्यूतां ग्रंथ संज्ञाम पासितुं अपारयन्त सागार प्रायो विषय मूर्छिताः। अनादि अविद्या के साथ बीज और अंकुर की तरह, क्या कहते हैं, बीज और अंकुर, बीज में से अंकुर होता है और अंकुर का वृक्ष होता है, फिर उसमें से बीज उत्पन्न होता है, तो बीज और अंकुर की तरह परंपरा से चली आई, परंपरा चल रही नहीं उसकी, अनादि अविद्या है, परंपरा से चली आई परिग्रह संज्ञा को छोड़ने में असमर्थ और प्रायः विषयों में मूर्छित सागार होते हैं। हम देखते हैं ना, हम देखते अपने जो पूर्व अवस्था, बचपन देखो या जब तक अपना शास्त्र का स्वाध्याय नहीं हुआ था तो अपनी अवस्था कैसी थी, अब थोड़े विचार तो इसी के चलते हैं कि यही करने लायक है, यही योग्य है। अब यहाँ क्या कहते हैं, ये जो अनादि अविद्या जो चली आई है परिग्रह संज्ञा को छोड़ने में असमर्थ है और प्राय यानी अधिकतर विषयों में मूर्छित ऐसे साकार होते हैं। परिग्रह जुटाने में, उसको भोगने में, उसको संभालने में ही लगा रहता है। विशेषार्थ, इसी श्लोक का विशेषार्थ बताया है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज पैदा होता है, अतः बीज अंकुर की संतान अनादि है। बीज अंकुर की संतान, ये प्रवाह रूप से वो अनादि से चला रहे हैं। तो पहले बीज के पहले अंकुर, पहले वृक्ष के पहले बीज, बोलो ना, दोनों अनादि से, क्योंकि बीज बिना वृक्ष नहीं, वृक्ष बिना बीज नहीं, तो दोनों का अनादि मानो तो अच्छा है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज पैदा होता है, अतः बीज अंकुर की संतान अनादि है। उसी तरह अज्ञान और परिग्रह संज्ञा की भी अनादि संतान है। अनादि काल से अज्ञान के कारण परिग्रह संज्ञा होती है और परिग्रह संज्ञा से अज्ञान होता है। परिग्रह संज्ञा है यानी वहां सारे कषाय भी है और उसके कारण वो फिर वही बात चलती रहती है। इस तरह अज्ञान में पड़ा गृहस्थ परिग्रह की अभिलाषा को छोड़ नहीं पाता। क्योंकि उसी के पीछे लगा है वो, कभी अभी आप आत्मा की बात ही नहीं सोचता है। वो बात अलग, अनादि अज्ञानी की बात चल रही है।
हम समझते कि मेरे पास 10 बंगले हैं, 50 गाड़ी है, 2-5 एरोप्लेन है, तो वो परिग्रह नहीं। वैसे जो ऐसे देखा जाए तो भरत चक्रवर्ती आदि जो चक्रवर्ती थे, जो षटखंड के आधिपत्य रखते थे, उनको कितना परिग्रह कहेंगे? उसको परिग्रह नहीं थे। वो होते हुए वो उनके ज्ञान के किए
उनमें जिसको हम कहते ना एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि नहीं है। भले उस परिग्रह है, उसके प्रति कुछ कुछ प्रमाण में राग भी है, ऐसा नहीं कि जो अनादि अविद्या वाले को उसको यहाँ उसके अपेक्षा से लेता
है। सामने महल देखता है
शेख चिल्ली करता है ना, शेख
चिल्ली
यानी ये जो परवस्तुओं को ये मेरी है, मैं उसका भोगता हूँ, मैं करता हूँ, ये मानकर भोग रहा है। और ज्ञानी को ऐसी बुद्धि नहीं है, बुद्धि ने ऐसी विपरीत मान्यता नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, ये दोनों में डिफरेंस है। इसको तो हाँ, ये तो उसका परिग्रह से वो तो मिथ्या तो पुष्ट करता रहता है। और जब तक मान्यता है और तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं है और उसकी तरफ देखने की रुचि भी नहीं है, सीखने की भी रुचि नहीं है, तो वो कब अपना स्वरूप समझेगा? तो इसे परिग्रह से अज्ञान इस तरह से कहा।
अच्छा बताते आपको मालूम है, मालूम है चक्रवर्ती एक दिन ऐसे आपको घूमने निकले थे, अकेले अपने देश बदल कर गाँव में कैसा चल रहा है, राज्य में बराबर चल रहा है कि नहीं, लोग बैठे थे तो इतना बड़ा राजा ये चक्रवर्ती है, उसको निष्परिग्रह कैसा हो सकता है? मेरा भी ऐसा बोल हो नहीं सकता। तो अपने भाई बहुत सिपाही को विचार करता है कि राजमोकेश्वर उनका जाते हैं क्या हो जाता है, उनको हमारा अनुभव देखना है ना, कहाँ का चांदी का मैं देखते हो, हीरा का ऐसा सत्य आया, मैं क्या उसको दिखाई दिया खुश हो जाता है, नहीं मिले तो नहीं मिले, देखने को तो मिले। एक मेरी कंडीशन है, तुम्हारे हाथ में कटोरा दिया जाएगा, उसमें तेल भरा है, एक बूंद भी गिरे तो पीछे दो नंगी तलवार लिए हुए सिपाही है तेरी गर्दन छाड़ देंगे। तो तू एक दिन घूमते 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 आया, अरे क्या क्या देखा बेटा, क्या देखता मैं तो तेल के तरफ ही देखता था। क्यों? अरे तेल गिर जाए तो मैं ऐसा बोल रहा था, हमारा तो पूरा ध्यान अपने शो में लगा हुआ है, ये तो है। अभी कभी ना किसको बोलना, आमतौर से ऐसी मान्यता है कि जितना बिलोंगिंग को सहयोग वाली उतना
पहले परिग्रह का नाम क्या है? परिग्रह संज्ञा दसवें है, परंतु समय सार में तो हमने देखा था राग किसको होता है, ज्ञानी को रागी नहीं कहेंगे। तो किस अपेक्षा से वो अनंतानुबंधी वाला ज्ञान वाला राग उसके नहीं, उसको राग नहीं कहने में आता, क्योंकि हमें मालूम है राग कहाँ तक होता है, कौन से मनस्थान में अपेक्षावश बास की जाती है। और यहाँ ये परिग्रह संज्ञा से अज्ञान होता है, यानी ये मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है, अनादि से चला आ रहा है ना, उसकी बात हो रही है। तो कहते इस तरह अज्ञान में पड़ा गृहस्थ परिग्रह की अभिलाषा को छोड़ नहीं पाता, इसी से गृहस्थ प्रायः स्त्री आदि विषयों में यह मेरी भोग्य है, मैं इनका स्वामी हूं, इस प्रकार ममकार और अहंकार रूप विकल्पों में फंसे रहते हैं। सभी में लगा लेना, वो खाने की चीजें है, अन्य चीज भोगने की चीजें, सभी में ये बात लगा लेना। वास्तव में शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु, ये सब सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले हैं, किंतु यह मूड इन सबको अपना मानता है। हमें पंडित कैलाश चंद जी सिखाते थे ना, अलीगढ़ वाले, बुलंदशहर वाले, तो यह मूड ऐसा कहते, यह उल्लू जीव, यानी लोग ऐसे मूड यानी कोई दूसरा होगा ऐसा पढ़ते हैं ना, तो यह मूड इन सबको अपना मानता। सम्यक दृष्टि भी चारित्र मोहकर्म के उदय के वशीभूत होकर ऐसा मान बैठता है, किंतु सभी सम्यक दृष्टि ऐसे नहीं होते, यानी मान बैठते नहीं, मानने में नहीं है, राग होता है उसको उनके प्रति, परंतु ये मेरे हैं, ये बिल्कुल जैसे अज्ञानी जैसी उनकी मान्यता नहीं है। जो पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए रत्नत्रय के महात्म्य से साम्राज्य आदि लक्ष्मी का उपभोग करते हुए भी तत्व ज्ञान और देश संयम की ओर उपयोग रखने के कारण भोगते हुए भी नहीं भोगते हुए की तरह प्रतीत होते, अभी जो आपने स्टोरी सुनी, भोगते हुए भी नहीं भोगते, उनको दृष्टि में रखकर ग्रंथकार ने प्रायः शब्द का प्रयोग किया है, जो बतलाता है कि सभी गृहस्थ विषयों में मग्न नहीं होते, किंतु कुछ सम्यक दृष्टि तत्वज्ञानी जो देश संयम के भी अभ्यासी होते हैं, वे विषयों को रुचि से नहीं भोगते, किंतु जैसे धाय धाय समझते, दाई माता कहते, धाय माँ कहते उसको, यानी वो क्या, पहले के जमाने में ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए ऐसी अलग से स्त्री बुलाई जाती थी, कहो या नौकरी पर रखी जाती थी, उसको धाय माँ कहते थे। ये अपने बच्चों को तो पिलाती है, परंतु हाँ, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए धाई माँ पराये पुत्र का पालन करते हुए भी, यहाँ लिखा देखो, जैसे धाय पराये पुत्र का पालन करते हुए भी उसे अपना नहीं मानती, वो तो दूध पिला रही है उसको, फिर भी वो उसको अपना नहीं मान रही। या जैसे दुराचारिणी स्त्री का स्वामी उसे अनासक्त भाव से भोगता है, उसी तरह वे कमलिनी के पत्र पर पड़े पत्र ने पन्न, यानी कमल का पत्ता देखा है कभी? हाँ, आड़ू से पान देख, वो देखा, उसमें क्या होता है, पानी डालो तो क्या होता है, वो बूंद ऐसी है तो इधर से उधर घूमती है, उसमें चिपकती नहीं, जल उसमें लगता नहीं है। तो कहते कमलिनी के पत्र पर पड़े जल की तरह निर्लिप्त रहते। ये उदाहरण कहाँ आया है समय सर में? चौदह पंद्रह में है ना, चौदह में है, अबदस पृष्ठ में आती है। मुझे तो स्वामी जी की याद आती है, वहाँ क्रॉस मैदान पर उसी गाथा पर इतने उन्होंने इतना उसको घोट घोट कर उसको बताया था। डूबा हुआ है फिर भी पानी से कुछ नहीं, क्योंकि उसके ऐसे वो कहते हैं उसके ऊपर इतने बारीक बारीक ऐसे रुआना शब्द उन्होंने यूज किया था स्वामी, ऐसे जो जो चिकनाहट होती है वो रहता ही नहीं है, कांटे जैसे नहीं, बाल जैसे ऐसे कुछ होते हैं उसमें, इसलिए उसके ऊपर कुछ नहीं रहता। तो कहते कमलिनी के पत्र पर पड़े जल की तरह निर्लिप्त रहते हैं। यहाँ उसी लिए उन्होंने इष्टोपदेश की श्लोक बताए नीचे, धात्रो बाला सती नाथ पद्मिनी जलवारिवत दग्धरज्जो वदा भाति भुंजानो पिन पाप भाग, यानी भोगते हुए भी नहीं भोगते, दग्धरज्जुवत आभाति, ये इन्होंने ऊपर नहीं लिखा है, जले हुए रस्सी की तरह, उसमें तो वो तो दिखाई देता ना उसको, जो क्या कहते हैं मराठी में उसको कहते पीड़, पीड़े ने वो रस्सी का जो परंतु तो जली हुई रस्सी नहीं के बराबर है ना, उसका कुछ नहीं है। यहाँ एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि ग्रंथकार ने अपनी संस्कृत टीका में, जिसका हमने विशेषार्थ में विचरण किया है, विवरण किया है, क्या कहते ये जो अभी बताया ना, किसी किसी संबंध दृष्टि के होता है, ये उन्होंने मूल संस्कृत टीका में ग्रंथकार ने ही बताया, ये विशेषता है। उन्होंने तो ग्रंथ लिखा ही है, उसकी टीका भी स्वयं लिखी है, ये उनकी खास विशेषता है आशादर जी की, और उनको पढ़ाया भी उन्होंने अनेक जगह। तो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा लिखा है जिसका हमने यहाँ विशेषार्थ में विवरण दिया है कि सम्यक दृष्टि को भी चारित्र मोहनीय कर्म के उदयवश विषयासक्त कहा है, किंतु जिन्होंने पूर्व जन्मों में रत्नत्रय का अभ्यास किया है और उसी के प्रभाव से जो इस जन्म में भी तत्वज्ञान और देश संयम में तत्पर रहते हैं, उन समय दृष्टि जीव शावकों को निरासक्त भोगी कहा है। उधर अमृत चंद्र जी ने कहा है, ये नीचे एक नंबर का समय सार कलश चाहिए, क्लेश हुआ है, कलश लिखना उसको। सम्यक आवाज नहीं आती, सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्य रूपाप्ति मुख्या यस्माद् ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च स्वस्मिन्नास्ते विरमति परा सर्वतो रागयोगा। इसका यहाँ अर्थ बताते हैं, इसका अर्थ देखेंगे ऊपर। अमृत चंद्र जी ने कहा है कि सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग्य शक्ति नियम से होती है, क्योंकि वह अपने यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए स्व का ग्रहण और पर के त्याग की विधि के द्वारा दोनों के भेद को परमार्थ से जानकर अपने स्वरूप में ठहरता है और पर से सब तरह का राग छोड़ता है। इस पर अपने भावार्थ में पंडित जयचंद जी साहब ने कहा है कि मिथ्यात्व के बिना, यानी जिसको मिथ्यात्व नहीं है, मिथ्यात्व के बिना चारित्र मोह संबंधी उदय के परिणाम को यहाँ राग नहीं कहा। क्या कहते हैं ये हमने पहले समय सार पढ़ा है, उसमें ये बात देखी थी कि मिथ्यात्व जहाँ नहीं है और मात्र चारित्र मोह का उदय है तो उस परिणाम को यहाँ राग में नहीं गिना है। इसलिए सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग्य शक्ति का अवश्य होना कहा है। मिथ्यात्व सहित राग को ही राग कहा गया है, वह सम्यक दृष्टि के नहीं है। यहाँ रुकेंगे हम, आगे भी इस संबंध में और भी चर्चा की है उन्होंने और उसके लिए हाँ एक तक हमने पढ़ा। मिथ्या तो सहित राग को ही राग कहा है, आप क्या कहते हैं? अच्छा वो रही है, मिथ्या तो सहित राग को ही राग कहा है, वह समय दृष्टि के नहीं है। जिसके मिथ्या तो सहित राग है वह समय दृष्टि नहीं है। यहाँ एक आंकड़ा पूरा होता है और उसके लिए हमने नीचे का कलश देखा। आगे जो कुछ दूसरा उदाहरण भी दे रहे हैं वो हम कल देखेंगे।
जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक न सदा।